नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राजसूय यज्ञ के अंदर भगवान की अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा और शिशुपाल ने सभा में खड़े होकर कभी कृष्ण को, कभी भीष्म को, कभी किसी को, चाहे जैसे बेहोशी में बोल रहा है। बहुत देर तक तो सब लोग सुनते रहे, भीमसेन से नहीं रहा गया। अपने स्थान से गदा लेकर भीमसेन उछल करके उसके पास जा रहा था, भीष्म पितामह बीच में आ गए। वो भीष्म पितामह से भी बड़ी मुश्किल से रुका। भीष्म पितामह ने कहा कि भीम, हम चुप हैं, द्रोणाचार्य चुप हैं और स्वयं साक्षात कृष्ण चुप हैं, इसका अर्थ समझो। भीम ने कहा कि वो चुप रह सकते हैं, मैं इतनी बात कृष्ण के लिए और आपके लिए इस शिशुपाल से नहीं सुन सकता। खूब आगे बढ़ने लगा भीष्म पितामह ने, आगे तू पितामह की आज्ञा मान, पर चलो पीछे। जबरदस्ती ले गए। शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ, अट्टहास पूर्वक कहता है, भीष्म छोड़ो, इसकी मौत मुझे, अब इसकी मौत मेरे पास भेज रही है, आप आने दो। पितामह भीष्म ने भीम को कहा, उसकी बात पर ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, सुनो, मैं तुम्हें शिशुपाल के विषय में सुनाता हूं। यहां से अब कथा प्रारंभ होती है। पितामह भीष्म ने भीमसेन को बड़ी मुश्किल से समझाकर रोका और कहा, सुनो भीमसेन, यह शिशुपाल जब चेदीराज के वंश में पैदा हुआ था तब इसके तीन नेत्र थे, चार भुजाएं थी और पैदा होते ही गधे के समान रेंकने लग गया था। सगे संबंधी उसकी आवाज से डर गए थे, सबके मन में बड़ी घबराहट हो गई थी। उन लोगों ने देखा, इसको उठाकर फेंक दो, ये बड़ा अपशकुनी बेटा हुआ है। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार था कि इस पुत्र को छोड़ दो। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा ये पुत्र बहुत बलवान होगा, इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता ये सुनकर प्रेम में पक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी की है, वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान, देवता अथवा अन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूं। केवल इतना जानना चाहती हूं कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथ से होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की दो भुजाएं गिर जाएं और जिसे देखने मात्र से तुम्हारे पुत्र का तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर बहुत से राजा लोग इसको देखने के लिए आए। चेदीराज ने सबका यथोचित सत्कार किया और प्रत्येक राजा की गोद में अपने पुत्र को दिया, लेकिन उसकी भुजा कम नहीं हुई, आंख भी लुप्त नहीं हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम अपने भुआ से मिलने और अपने भुआ के लड़के को देखने के लिए चेदीराज आए। अपनी बुआ को प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कृष्ण का बड़ा स्वागत किया। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में बड़े प्रेम से अपना बालक लाकर रख दिया। उसी समय उसकी दो भुजाएं गिर गईं और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल होकर भयभीत होकर कृष्ण से कहने लगी, अरे कृष्ण, तुम्हारे आने पर मैं बहुत प्रसन्न हुई, मेरा भतीजा आया है, लेकिन अब तो मुझे तुमसे डर लगने लग गया। हे कृष्ण, तुम तो दुखी प्राणियों को आश्वासन देने वाले हो, भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वरदान दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना। बस केवल इतना ही वरदान मांगती हूं। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, आप मेरे से डरती हो, मुझसे शोक करती हो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे ऐसे सु अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिनके बदले में इसको मार डालना चाहिए, ऐसे सो अपराध करेगा मैं क्षमा कर दूंगा। भीमसेन, इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके? यह कुल कलंक अब काल के गाल में है। इस समय यह मूर्ख हम लोगों को कुछ न समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं है कि कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण अपने आप इस तेज को अपने अंदर समेट लेंगे। भीष्म की बात शिशुपाल से सही नहीं गई। वह क्रोध से जलकर कहने लगा, ए भीष्म, तुम भाट के समान बार बार जिसका गुणगान करते हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखाता? कब उसका वो समय आएगा? भरी सभा में मैं ललकारता हूं, फिर भी वो मुंह दुबाकर चुपचाप बैठा है। हम तो उसके साथ द्वेष भी करते हैं, खुला बोलते हैं, लेकिन तुम इतने सठिया गए, बुढ़े हो गए, बुद्धि काम नहीं करती। तुम्हारी आदत तो दूसरों की खुशामदी में लगी हुई है, प्रशंसा करने में लगी है। क्यों तुम अप्रशंस्य की प्रशंसा करते हो? दरदराज वालिक की स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कांप उठती थी। अंग बंगाधिपति कर्ण, महारथी द्रोण, अश्वत्थामा, इनकी भरपेट स्तुति करो, सब तुम्हारी स्तुति करने लगेंगे। भीष्म, क्या तुम्हें इनकी प्रशंसा करने में कोई कष्ट होता है? और कोई तुम्हें प्रशंसा के लिए मिला ही नहीं? तुम अपने मन से ही भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को सब कुछ मानकर बातें बधार रहे हो, ये तुम्हारे बुद्धि और बल के अनुसार उचित है? वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो, ये चाहे तो अभी तुम्हारा प्राण ले लें, इसीलिए तुम इनकी खोटी खोटी प्रशंसा करते रहो। भीष्म पितामह ने कहा, शिशुपाल, तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूं, परंतु मैं इन राजाओं के तृण के समान नहीं समझता। हमने जिन श्री कृष्ण की पूजा की है, वे सबके सामने बैठे हैं, हमने हमारा सब कुछ इन्हीं को दिया है। जो मरने के लिए उतावले होते हो, वे इस चक्रधारी कृष्ण को युद्ध में ललकारो, वही इनको भूलो और कृष्ण को छोड़कर दूसरों की प्रशंसा में लगो। मैं दावे के साथ कहता हूं, शिशुपाल, उनको ललकारने वाला रणभूमि में धराशायी होगा और उसे उन्हीं के शरीर में स्थान मिलेगा। शिशुपाल ने जोश में आकर कृष्ण की ओर रुक करके कहा, हे कृष्ण, भीष्म मुझे उत्साहित कर रहा है, मैं तुम्हें ललकारता हूं, आओ मुझसे भिड़ जाओ, पांडवों के साथ मैं तुमको यमपुरी भेज दूंगा। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है, तुम लोगों का वध ही उचित होता है, लेकिन आज तुम्हारी पूजा होती है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी आंख से तेरी पूजा देख रहा हूं। शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा, राजाओं, हम आप लोगों के संबंधी हैं और यह शिशुपाल भी हमारा संबंधी है, फिर भी यह हमसे न जाने क्यों शत्रुता रखता है। आप लोग जितना प्रेम करते हो उससे न जाने कितनी गुनी यह हमसे शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस दुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के द्वारिकापुरी जला डालने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके साथी सभी साथियों को मार डाला और बांधकर राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने की यज्ञी अश्व को पकड़ लिया। यदुवंशी तपस्वी बब्रू की पत्नी जिस समय सौबीर देश के लिए जा रही थी, वह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसको ममेरी बहन भद्रा करुषराज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसका भी हरण कर लिया। ये सब देख सुनकर मुझे अपार कष्ट होता है, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं सब कुछ सहन करता रहा। आज ये दुष्ट आप लोगों के सामने जो बोल रहा है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है वो आप लोग देख रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या क्या काम किया होगा। इतने लोगों के बीच में भी जब ये मर्यादा विहीन वाणी का प्रयोग करता है, तो स्वतंत्र होने पर तो ये जाने क्या करता होगा। आज इसने इस आदरणीय राज्यसभा के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठट्ठा ठट्ठा कराकर हंसने लगा और उसने कहा, कृष्ण, यदि तुझे 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुन और उसको सहन भी कर, न गरज हो तो चाहे जो कुछ तुम्हें करना है कर लो, तेरे क्रोध या प्रसन्नता से मेरी कोई हानि लाभ होने वाला नहीं है, तेरे क्रोध से मैं मरने वाला नहीं और तेरी प्रसन्नता से मैं जीने वाला भी नहीं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की बात सुन रहे थे, भगवान ने नेत्र बंद किया और अपने सुदर्शन का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन चक्र उनके हाथ के अंदर जगमगाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से नरपतियों से कहा, राजाओं से कहा, हे राजाओं, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था उसका कारण यही था कि मैंने इसकी माता के वचन निभाए हैं, 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी, अब मेरे वचन के अनुसार इसकी संख्या पूरी हो गई है, इसलिए आप लोगों के सामने इसका सिर धड़ से अलग कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना किसी विलंब से अपने चक्र को अपने हाथ से आगे जाने दिया और वही चक्र सीधा जाकर शिशुपाल का सिर काटा और शिशुपाल देखते देखते धराशायी हो गया और वो चक्र आकर भगवान के अंदर विलीन हो गया। देखते रह गए। शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली और वो ज्योति निकलकर पहले कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है और देखते देखते ही भगवान में समा जाती है। लोग ये घटना देखकर आश्चर्य करने लगे, अरे ये जीते जी तो कृष्ण के साथ कैसा द्वेष करता है और मरने के बाद इसकी ज्योति कृष्ण को प्रणाम करती है, ये क्या बात है। लोग इस समय कुछ पूछना चाहें तो क्या पूछें, सभी एक स्वर से भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन आदि ने तत्काल उसका शव को वहां से हटाया, जगह साफ की, उसका अंतिम संस्कार करा के वो बात वहीं समाप्त कर दी। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ वहीं शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज्य पर अभिषेक कर दिया कि बेटा अब तुम वहां के राजा। जन्मेजय परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। उसे देखकर उत्साही वीरों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो जाते थे। सारे कार्य खूब आनंद से संपन्न होने लगे। धन संपत्ति तो आवश्यकता से अधिक आने लगी। असंख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे के भरे रहते थे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान कृष्ण उनके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तब तक सर्वशक्तिमान शारंग चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा में तत्पर रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान कर चुके तब सभी राजाओं ने उनके पास आकर कहा, हे धर्मज्ञ सम्राट, बड़े असौभाग्य की बात है, आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त तो हो गया। आज आपको सम्राट पद प्राप्त करके आज आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमीर वंश राजाओं का यश उज्ज्वलित कर दिया। इस यज्ञ के द्वारा महान धर्मानुष्ठान हुआ। इस यज्ञ में हम लोगों को भी इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार प्राप्त हुआ जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग अपनी राजधानी में जाएं। धर्मराज ने बड़ी विनम्रता से सबकी प्रार्थना स्वीकार की और सब राजाओं को अपनी सीमा तक पहुंच आने के लिए भाइयों को नियुक्त किया और अच्छा पधारिए, आपका मंगल हो। भीमसेन अर्जुन आदि ने बड़े भाई के आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा किया। जब सब राजा और ब्राह्मण वहां से पधार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजस्व यज्ञ सकुशल संपन्न हो गया। अब यदि आप आज्ञा दो तो मैं द्वारिका चला जाऊं। धर्मराज ने कहा, आनंद कंद गोविंद, यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से पूरा हुआ है। यह आपकी कृपा का प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं उपस्थित हुए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कह देगी। आपके बिना तो मुझे एक क्षण के लिए भी आनंद नहीं मिलता, परंतु करूं क्या, लाचारी है, आपको भी तो द्वारिका जाना ही पड़ेगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को साथ लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और बड़ी प्रसन्नता से कुंती के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, बुआ जी, आपके पुत्रों ने आज सार्वभौम सम्राट का पद प्राप्त किया है, इनका मनोरथ पूरा हो गया है, धन संपत्ति बहुत मिल गई है, अब आप प्रसन्नता से रहिए, मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारिका जाना चाहता हूं। कुंती ने बड़े प्रेम से कृष्ण को अपने छाती से लगाया, प्रेम से कुंती गदगद होकर रोने लगी। भगवान ने फिर कुंती को प्रणाम किया, विदा हुए। सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न करके भगवान महल से बाहर आए, स्नान जप आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। इसी समय दारुक मेघ के समान श्याम वर्ण रथ सजा कर ले आया। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण गरुड़ ध्वज रथ के पास पधारे, प्रदक्षिणा की और उस पर सवार हो गए। रथ रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई के साथ पैदल पैदल रथ के पीछे पीछे चलने लगे। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए रथ को रोककर धर्मराज से कहा, हे राजेंद्र, जैसे मेघ समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियों को आश्रय देते हैं, वैसे ही आप बड़ी सावधानी से प्रजा का पालन कीजिए। जैसे सभी देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं, वैसे आपके सभी भाई आपकी इच्छा के अनुसार चलते रहें। इस प्रकार की बातें कह सुनकर मिल भेंट कर श्री कृष्ण और पांडव अपने अपने स्थान पर चले आए। जन्मेजय, जब महायज्ञ राजसूय, जिसका होना बड़ा दुर्लभ है, समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास आए। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उठकर उनका खूब सत्कार किया, पूजा की, सोने के सिंहासन पर उनको विराजमान किया और फिर उनकी आज्ञा से युधिष्ठिर और पांडव अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सबके बैठने पर भगवान वेदव्यास ने कहा, हे कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके इस देश की बड़ी उन्नति की है, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सतपुत्र कुरुवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं वे। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ, तुमसे जाने की अनुमति मांगता हूं। हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करते हुए कहा, भगवान, मुझे एक बात का संशय है जो आप ही दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं, आप कृपा करके ये बताइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या अभी भी ये उत्पात बाकी रहेगा। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा, राजन, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, ऐसे उत्पातों पर नजर रखनी चाहिए। इन उत्पातों का फल आज से 13 वर्ष के बाद होगा और इसका परिणाम समस्त क्षत्रियों का संहार होगा और उसमें तुम निमित्त बनोगे। कांपते हुए युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवत स्वरूप व्यास, मेरे निमित्त इतना बड़ा जनसंहार? मैं तो ऐसे ऐसे राजसूय यज्ञ करके प्रसन्न होना चाहता हूं, क्या ये सब संहार मेरे निमित्त होगा? व्यास जी ने कहा, पुत्र घबराओ मत, तुम्हारे निमित्त होने का कारण यही है कि तुम्हें उस समय दुर्योधन के अक्षम्य अपराधों को रोकने के लिए यह क्षत्रिय संहार अवश्य करना पड़ेगा, उसके लिए तुम विवश हो जाओगे। और ये क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ चले गए कैलाश पर्वत की ओर। महाराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विह्वल हो गए, उनकी सांस गरम गरम चलने लगी। बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद कर करके अपने भाइयों से कहते थे, भाइयों तुम्हारा कल्याण हो, आज से जो मेरी प्रतिज्ञा है उसे सुनो, अब मैं तेरे वर्ष जीकर ही क्या करूंगा, यदि जीना है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं बोलूंगा, भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उनके कथनानुसार काम करूंगा, अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने में मुझे भेदभाव नहीं दिखेगा। सचमुच भाइयों, भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ होती है ना, मेरे मन में भेदभाव नहीं होगा तो क्यों लड़ाई होगी। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसी का पालन करने लगे। वे नियम से पितरों का तर्पण, देवताओं की पूजा करते थे। इस प्रकार सब विदा हो गए। अब इंद्रप्रस्थ में केवल दुर्योधन और शकुनी, ये दोनों ही युधिष्ठिर के पास थे। जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने इधर शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहर कर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। लोगों के सामने वो शकुनी को कुछ कहते तो नहीं थे, पर आंखों ही आंखों के इशारों में उनकी बहुत सी बातें हो चुकी थी। देखते उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देख नहीं सकता था। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक की चौक में पहुंच गया। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक के चौक में पहुंच गया और वो स्फटिक इतना चमकीला था, उसे भ्रम हुआ कि जल है। वह जल समझकर अपने वस्त्रों को उठाकर चला। पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुख हुआ और वह यूं ही इधर उधर भटकने लगा। अंत में वह स्थल को जल समझकर उसमें गिर पड़ा और दुखी और लज्जित हो गया। वह वहां से अभी कुछ ही आगे बढ़ा कि स्थल के धोके स्फटिक के समान निर्मल जल और कमलों से सुशोभित बावड़ी में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने दुर्योधन को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर दिए। उसकी यह दशा देखकर भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सब खूब हंसने लगे। दुर्योधन के असहिष्णु चित्त में उनकी हंसी से अपार कष्ट हुआ, परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं और स्वयं भी थोड़ा थोड़ा अपनी झेप मिटाने के लिए हंसने लग गया है। हंसने लग गया हूं। इसके बाद जब ये दरवाजे की आकार की स्फटिक निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि नीचे आकर गिर गया। एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर गया। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा तो धोखा समझकर दीवार समझकर वापस लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन और पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता, राजाओं की अधीनता, आबाल वृद्ध की सहानुभूति, ये दुर्योधन के अंदर भयंकर जलन पैदा करने लगी और अकस्मात दुर्योधन की चेहरे की कांति नष्ट हो गई। शकुनी ने अपने भांजे को विकलता चाड़कर कहा, शकुनी ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी सांस लंबी क्यों चल रही है? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर ली और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसु यज्ञ संपन्न कर लिया। उनका ये ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु ये राजा इतने बुजदिल की कोई चू तक नहीं बोला। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज लक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दिखता नहीं है, तो अब मैं सोचता हूं कि ऐसे प्राण रखकर क्या करूं, मर जाऊं तो बड़ा अच्छा है। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य और इतनी उन्नति देखी नहीं जाती। मुझे तो लगता है कि जीवन में प्रारब्ध ही प्रधान है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है। मामा जी, मैंने पहले पांडवों के नाश के लिए लाक्षागृह की योजना बनाई थी, पर वे कैसे बच गए? प्राण बचाने वे तो बहुत से प्राणी घूमते हैं, पर उत्तरोत्तर इनका विकास होता चला गया। इसका मतलब है कि भाग्य की ही प्रधानता है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है। मैंने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, कोई अर्थ नहीं निकला। भाग्य की अनुकूलता से वे तो बढ़ते ही जा रहे हैं और मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं, मेरी अवनति होती जा रही है। अमामा जी, आप उस दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूं। इसे तो अच्छा है, बहुत जल्दी मरकर मेरा शरीर भी आग के अंदर समर्पित कर दूं। आप पिताजी के पास जाकर ये समाचार सुना दो। शकुनि ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भाग का भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं है। अरे, पांडवों के तो चार ही, युधिष्ठिर के तो साथ में चार ही तो भाई है ना। तुम्हारे पास 99 भाई हैं, अपने भाई सहित वो 5 हैं, तुम 100 हो। तुम्हारे अधीन नहीं है, विचार करो, सब तुम्हारी बात मानते हैं। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचारी, राजा सौमदत्ती तथा उसके भाई, क्या तुम्हारे पक्ष में नहीं है? तुम इनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बताए हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं और उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। इस समय पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा, सब राजा और सभा सब मेरे अधीन हो जाएगी। मामा जी, आपने तो मेरे प्राण बचा दिए। कहां तो मैं मरने जा रहा था, कहां आप मुझे सारे भूमंडल का सम्राट बनाने की बात सोच रहे हो। शकुनि ने कहा, दुर्योधन, हर बात को गहराई से सोचो। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं के शक्ति के भी बाहर है। ये सब महारथी श्रेष्ठ धनुर्धर अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा है। अच्छा मैं एक बात तुमको बताता हूं, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बता दूं। युधिष्ठिर को जुए का बहुत शौक है परंतु उन्हें खेलना आता नहीं है। यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर पाएंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूं कि भूमंडल में तो क्या त्रिलोक में भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको बुलाओ और मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा। दुर्योधन ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो, उनकी आज्ञा मिलने पर मैं तुम्हें अवश्य विजय दिला दूंगा। दुर्योधन ने कहा मामा जी बड़ी प्रसन्नता की बात बोलते हो, मेरा सारा शोक दूर हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया। अब इतना काम आप ही पिताजी से कहिए ना, मेरे कहने पर पिता माने। मामा जी आप ही जाकर उनसे बोलिएगा मैं उनका पुत्र हूं, इसलिए मेरी बात संभवत है वो न स्वीकार करें, मेरा कहना उचित नहीं होगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, हस्तिनापुर लौटने पर शकुनी ने प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज मैं आपको समय पर ये सूचित किए देता हूं कि दुर्योधन का आजकल चेहरा बड़ा उतरा उतरा रहता है, वह दिनों दिन दुबला और पीला हो गया है, आप तो उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो रात दिन दुबला पतला हो रहा है, शोक चिंता में डूबा हुआ है, वो अपने ही हृदय के संताप में जल रहा है, आप उसको बुलाकर उसे पूछते क्यों नहीं है? क्या आपको अपना बेटा प्यारा नहीं लगता? मेरा तो भांजा होते भी मुझे इतना प्यारा लगता है, और आपका बेटा होते ही आपको प्यारा नहीं लगता, इसलिए आप उसको बुलाओ और उसको पूछो कि तुम्हारा क्या कष्ट है। धृतराष्ट्र ने कहा, शकुनी मुझे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास दुर्योधन को भेजो, मैं उससे पूछता हूं। दुर्योधन को संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा क्या बात है? शकुनी ने कहा कि तुम पीले हो गए, दुबले हो गए, विवर्ण हो गए, तुम जलते हो, खिन्न हो, क्या बात है? मुझे तो कोई शोक का कारण मालूम नहीं देता, तुम्हारे भाई तुम्हारे मित्र सब तुम्हारे पक्ष में है, कोई अनिष्ट नहीं कर रहा है, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी मैं तो कायरों के समान खा पी कर पहन कर अपना समय गिन गिन करके निकाल रहा हूं, मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है, जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज लक्ष्मी देखी मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं दीन दुर्बल हो गया हूं। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना धन देखा तो क्या सुना तक नहीं था, शत्रु की अतुल धनराशि देखकर कौन आदमी चैन से सोएगा, बड़ा बेचैन हो गया हूं। और फिर श्री कृष्ण का प्रभाव, कृष्ण को उन्होंने कितने सम्मान के साथ अग्र पूजा में स्थापित किया, और कृष्ण ने बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया, पांडवों के प्रति कृष्ण का इतना आपस का प्रेम मेरी जलन का महान कारण है। लोग सब और तो दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तर की ओर पक्षियों के सिवा कोई नहीं जाता। पिताजी वहां अर्जुन गया, अपार धनराशि लेकर आया, लाख लाख ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी संकेत रूप से जो संकट ध्वनि होती थी उसे बार बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के समान मुझे तो लगता है कि आज यम इंद्र वरुण कुबेर किसी के पास भी नहीं होगा। सच पूछा जाए पिताजी, मैं उसकी राज लक्ष्मी देखकर जल रहा हूं, मैं अशांत हूं। दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने शकुनी ने कहा, दुर्योधन वह राजलक्ष्मी पाने का उपाय तुम्हें मैं बतलाता हूं। मैं द्यूत क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूं और युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं पर खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें यहां बुलाओ और मैं कपट द्यूत से उन्हें जीत कर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य संपत्ति ले लूंगा। शकुनी की बात पूरी होने पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी द्यूत क्रीड़ा कुशल मामाजी केवल द्यूत के द्वारा ही पांडवों की सारी राजलक्ष्मी लेने का उत्साह दिखा रहे हैं। अब आप उनको आज्ञा दीजिए ताकि उससे मेरे मन में को शांति मिले। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं, मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूं। उनसे विचार विमर्श करके ही मैं कोई निश्चय करूंगा कि इस विषय में क्या करना चाहिए। दुर्योधन वो बड़े दूरदर्शी हैं, जो बात दोनों पक्ष के लिए हित की होगी वही कहेंगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी आओ, ये विदुर जी आ गए, तब तो वो आपको अवश्य रोक देंगे। हाँ पिताजी, यदि विदुर जी आ गए तो अवश्य रोक देंगे, और यदि उनके कहने पर आपने ये द्यूत क्रीड़ा रोक दी तो उधर मेरे प्राण निस्संदेह मैं त्याग ही दूंगा। फिर आप विदुर जी से सलाह मशुरा करते रहिएगा और इस राज्य को भोगते रहिएगा। दुनिया यही कहेगी कि धृतराष्ट्र का लाडला बड़ा बेटा यहां प्राण त्याग कर मर गया, मेरी मृत्यु का दुख आप भोगते रहिएगा। दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली, परंतु फिर जुए को अनर्थ की खान जानकर विदुर से तो सलाह करने का निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया। विदुर जी के पास जब समाचार आया तो विदुर जी ने समझ लिया कि अरे अब तो कलयुग अथवा कलयुग आरंभ होने वाला है, विनाश की जड़ अब जम रही है। बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उन्हें सम्मान के साथ कहा, राजन जुए की बात चल रही है, मैं जुए के उद्योग को बहुत अशुभ लक्षण समझ रहा हूं। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजों में बैर विरोध ना हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं भी तो यही चाहता हूं, परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजों में कलह नहीं होगा। भीष्म द्रोण और मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनीति नहीं होगी। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाया और एकांत में उससे कहा, बेटा विदुर बड़े नीति निपुण हैं, ज्ञानी हैं, वे हमें बुरी सम्मति नहीं दे सकते। वे जुए को अशुभ बताते हैं, तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ करने का संकल्प छोड़ दो। विदुर की बात मानो, विदुर की बात परम हितकारी है, उनकी सम्मति से सब काम करने में तुम्हारा परम हित होगा। भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश दिया था वो विदुर को पूरा याद है। यादवों में जैसे उद्धव वैसे कौरवों में विदुर हैं। मुझे तो जुए में विरोधी विरोध दिख रहा है, जुआ आपसी फूट का मूल कारण, इसलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो माता पिता का काम होता है हित अहित समझा देना, सो मैंने कर दिया। तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर पक्का भी कर दिया। जुए में क्या रखा है छोड़ो ये सब बखेड़ा। दुर्योधन ने कहा पिताजी मेरी धन संपत्ति तो बहुत साधारण है, उसमें मुझे संतोष नहीं है। मैं युधिष्ठिर की सौभाग्य लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूं, इस बात को आप कितनी बार सुनना चाहेंगे। मेरा कलेजा बिहर रहा है, हाय मेरा कलेजा पत्थर का है, तभी तो मैं इतनी बातें करते हुए भी आपको कुछ कह नहीं पाता हूं और सब कुछ दृश्य सह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा युधिष्ठिर के यहां नीप चित्र कांकुर कारस्कार और लोह जंग आदि राजा दासों के समान विनीत भाव से सेवा कर रहे थे। समुद्र के अनेक द्वीप और रत्नों की खाने खोद कर हिमालय के राजा तनिक देर करके आए तो उनकी भेंट को अस्वीकार कर दी। इतना बड़ा अपार धन युधिष्ठिर ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था, वो सब देखा है। हीरो रत्नों और मणि माणिक्यों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई उसका कोई और छोर का पता नहीं। जब रत्नों की भेंट लेते लेते मेरे हाथ थक गए, मैं क्षण भर में विश्राम किया, तब तक तो राजाओं की भीड़ की बाढ़ लग गई और दूर तक लाइन लग गई। मैं दानव बिंदु सरोवर से अनेकों रत्न लेकर आया और स्फटिक की शिलाएं बिछाकर बावड़ी सी बना दी। मैंने उसे जल समझ लिया था और स्फटिक के गच पर वस्त्र उठा उठाकर चलने लगा। भीमसेन ने यह समझकर हंस दिया कि यह हमारी संपत्ति देखकर भौचक्का हो गया है, ठहाका मार करके हंसा। वो हंसी अभी मेरे अंदर छुरी का काम कर रही है। जिस समय मैं बावली को स्फटिक समझकर गच समझकर जल में गिरा, उस समय केवल भीमसेन ही नहीं अर्जुन भी द्रौपदी भी कृष्ण भी और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी। जिन रत्नों को मैंने कभी नाम नहीं सुने उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आंखों से देखा है। पिताजी समुद्र पार या समुद्र तट के वनों में रहने वाले वैराम पारद आभीर कितव जाति के लोग जो बरसों के जल से उत्पन्न अन्न के द्वारा ही निर्वाह करते हैं, क्या क्या रत्न लेकर आए। वे रत्नों को बकरे मेंढे और खच्चर ऊंट गधे सब पर लाद लाद कर लाए, परंतु कोई फाटक के बाहर खड़े रहे, कोई उनको अंदर आने का अवकाश नहीं दे रहा था क्योंकि अभी और अंदर की भीड़ पूरी नहीं हुई थी। उनको अपने रत्न लेकर बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। म्लेच्छ देशाधिपति प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त बहुत से ऊंची जाति के ऐसे घोड़े और उपहार लेकर आए जो घोड़े पैर पर पैर नहीं रखते थे। वे कहने लगे हमको अंदर आने दो, आज्ञा नहीं मिली। चीन शक औड़ जंगली बरबर काले काले हार हूं पहाड़ी नीपेर अनूप देश के वासी राजा रोके जाने के कारण द्वार पर खड़े रहे और अंत तक वे प्रवेश नहीं कर पाए। इतनी भीड़ लगी हुई, कितने ही लोग दूर तक धावा मारने वाले हाथी अरबी घोड़े पद्मों के मूल्य का सोना भेंट लेकर आए थे, परंतु वे भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। पिताजी आप जानते हैं कि मेरू और मंदराचल के बीच में शैलोदा नाम की नदी है, उसके दोनों तटों पर बांसुरी के समान बजने वाले बांसों की घनी छाया में खस एकासन अर प्रदर दीर्घवेणु पारद कुलिंद तंगण एवं पारंगण तथा और भी जातियां बसती हैं। अनेक राजा डालियों में भरकर चींटियों के द्वारा चुनी हुई स्वर्ण राशि भेंट के लिए ले आ रही है। चींटियों के द्वारा चुनी स्वर्ण राशि भेंटों भेंट के लिए आ रही है। उदयाचल निवासी करुषराज, ब्रह्मपुत्र नद के उभय तट निवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते हैं, अस्त्र रखते और कच्चा फल खाते हैं, उपहार लेकर आए। कितने राजा खड़े खड़े भीतर प्रवेश की बाट जोते रहे, लेकिन द्वारपाल ने यही कहा कि अभी अंदर की भीड़ समाप्त नहीं हुई है। वृष्णिवंशी श्री कृष्ण ने अर्जुन का मान रखने के लिए 14,000 हाथी दिए थे। पिताजी, इसमें संदेह नहीं है कि अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। इन दोनों को मैं साथ साथ हंसते बतियाते, हाथ से हाथ मिलाकर उस यज्ञ में चलते देखता था तो मेरा हृदय कंपित हो जाता था और ऐसा लगता था कि ये इन दोनों का साहचर्य मेरे मृत्यु का कारण हो सकता है। अधिक क्या कहूं। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन कृष्ण के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णों के दिए हुए प्रेमोपहार, विजातियों की उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जल रही है। पिताजी, मैं मरना चाहता हूं। कहां तक कहें। राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्न से जिनका भरण पोषण करते हैं, उनमें 3 पद्म 10,000 हाथी घोड़ों के सवार, 1 अरब रथी और असंख्य पैदल वहां उपस्थित थे। चारों वर्णों के लोगों में मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिर के यहां भोजन पान अलंकार एवं सत्कार ग्रहण न किया हो। युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। 88,000 10,000 ऊर्ध्वरेता मुनिजन सुवर्ण के पात्रों में प्रतिदिन भोजन करते हैं। पिताजी, द्रौपदी स्वयं भोजन करने के पूर्व इस बात की जांच पड़ताल करती रहती है कि कोई बौने लूले लंगड़े आदि भोजन के बिना रह तो नहीं गए हैं। पिताजी, पांचालों के साथ पांडवों का संबंध बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अंधक तथा वृष्णिवंशी उनके सखा हैं, इसलिए केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते हैं, बाकी सभी उनके करद सामंत हैं। बड़े बड़े सत्य प्रतिज्ञ विद्वान, व्रती, वक्ता, याज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में संलग्न रहते हैं। वे लोग इतने बड़े राजा होकर भी युधिष्ठिर से आंख मिलाकर नहीं बोलते। राजा युधिष्ठिर अभिषेक के समय वालिक स्वर्ण मंडित रथ ले आए। राजा सुदीक्षण ने उसमें कंबोज देश के सफेद घोड़े जोते, महाबली सुनीत ने रास लगाई और शिशुपाल ने ध्वजा, दक्षिण देश के राजा ने कवच, मगधराज ने माला पगड़ी, वसुदान ने 60 वर्ष का हाथी, एकलव्य ने जूते, अवंती राज ने अभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल लाकर दिया, शल्य की सुंदर मूठ की तलवार और सुवर्ण जड़ित पेटी, चेकितान ने तरकस और काशीराज ने धनुष दिया। इसके बाद पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यास ने नारद, असित और देवल मुनि के साथ युधिष्ठिर का अपने हाथ से अभिषेक किया और उस अभिषेक में महर्षि परशुराम के साथ बहुत से वेद पारदर्शी ऋषि महर्षि सम्मिलित हुए थे। उस समय युधिष्ठिर देवराज इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेक के समय सात्यकी ने राजा युधिष्ठिर का छत्र, अर्जुन और भीमसेन ने चंवर व्यजन और शकुन और नकुल और सहदेव ने दिव्य चमर ले रखे थे। वरुण देवता का कलशोदधि शंख जिसे ब्रह्मा ने इंद्र को दिया था, और सहस्र छिद्रों वाला फुआरा जिसे विश्वकर्मा ने अभिषेक के लिए तैयार किया था, उसको लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया और उसी से ही अभिषेक किया। पिताजी, ये सब देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अर्जुन ने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ 500 बैल ब्राह्मणों को दिए और प्रत्येक के सींग के ऊपर सोना मना हुआ था। राजसु यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसी सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी, वैसी रंतिदेव, नाभाक, मानधाता, मनु, पृथु, भगीरथ, ययाति और नहुष की भी नहीं होगी। पिताजी, इन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय जल रहा है, चैन नहीं है, दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जा रहा हूं। शोक रूपी समुद्र में लहरों की थपेड़े खा खा कर गोते खा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई तट नहीं मिल रहा है। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेषी को मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते हैं, तब तुम क्यों मोहवश द्वेष करते हो, अशांत रहते हो, उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो? यदि आज ऐसी संपत्ति तुम्हारी होती तो क्या पांडव लोग तुम्हें देखकर जलते? मेरे विचार से नहीं जलते। यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है तो ऋत्विजों को आज्ञा दो, तुम्हारे लिए भी वैसा ही राजसु यज्ञ करा देंगे, तुम्हें भी लोग तरह तरह की भेंट देंगे। बेटा, दूसरे का धन चाहना तो लुटेरों का काम होता है, जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है वही सुखी होता है। दूसरों का धन मत चाहो, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करो। यही वैभव का लक्षण है जो विपत्ति से दबता नहीं, कुशलता से अपने काम करता है और चाहता है कि सबकी उन्नति हो, जो सावधान और विनयी हो, उसे सर्वदा मंगल के दर्शन होते हैं। अरे बेटा, वे तो तेरी रक्षक भुजा है, पांडव लोग भुजा के समान तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, उनको काटो मत, उनका धन भी तुम्हारा ही धन है ना। इस गृह कलह में अधर्म ही अधर्म दिखता है, उनके और तुम्हारे दादा एक है, तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो? दुर्योधन कहता है, पिताजी, आप तो बड़े अनुभवी हैं, आपने जितेंद्रिय रहकर गुरुजनों की सेवा की है, फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय प्राप्त करना। आप मुझे जिन्हें भाई कहते हैं वो मेरे शत्रु हैं, और शत्रु पर विजय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। फिर इस स्वकर्म से आप मुझे क्यों निवृत्त करते हैं? आपके अंदर अधर्म की क्यों शंका उठी है? गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रु को दबाने का हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। केवल मार्ग काट के साधन ही थोड़े ही होते हैं, असंतोष से राज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं तो असंतोष से ही प्रेम करता हूं। यदि आदमी संतोष करके बैठ जाएगा तो उतना ही पैसा उसके पास रहेगा, उतनी संपत्ति रहेगी, असंतोष करेगा तो और संपत्ति उत्पादित करेगा। संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए यत्न प्रयत्न करना, यही तो नीति निपुणता है। जो असावधानतावश शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृक्ष की जड़ में लगे दीमक अपने आश्रय वृक्ष को खा जाते हैं, वैसे ही साधारण शत्रु भी बल से अभिवृद्ध होकर बड़े बड़ों का संहार कर डालते हैं। शत्रु की लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न कभी नहीं होना चाहिए पिताजी, हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी एक भार है। धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है, पांडवों की राजलक्ष्मी अपनाए बिना मैं कभी निश्चिंत नहीं रह सकता। अब मेरे लिए केवल दो ही मार्ग है, पांडवों की संपत्ति प्राप्त करना अथवा मृत्यु को प्राप्त करना। मेरी वर्तमान दशा से तो मृत्यु मुझे श्रेष्ठ लगती है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम जब ऐसी बात बोलते हो तो मेरा हृदय जलता है। मैं तुम्हारी मृत्यु कभी देखना चाहता ही नहीं, सोच ही नहीं सकता। मैं तो तुमको ये समझाता हूं कि बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार ठीक नहीं है, क्योंकि बैर विरोध से झगड़ा बखेड़ा होगा, इससे कुल का नाश होगा और बिना लोहे के शस्त्र से हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। लोग हमें महामूर्ख कहेंगे। इसलिए बेटा मैं तुम्हें ये बात बोलता हूं। दुर्योधन ने कहा, पिताजी यह कोई नई बात तो है नहीं, द्यूत क्रीड़ा तो राजा लोग खेलते आए, उसमें झगड़ा बखेड़ा क्या होगा? ये तो द्यूत है, जुआ है, खेलो। खेलने में तो मनोरंजन होता है, युद्ध कहां होता है? आप हमारे मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए और पांडवों को भी यहां आने का निमंत्रण दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, देखो कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े, क्योंकि तुम धर्म के विपरीत दिशा में जा रहे हो। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले ही जान ली है। संयोग ही ऐसा है, लाचारी है। यदि क्षत्रियों का महान संहार आना है तो वो तो आएगा ही, कोई टाल नहीं सकता। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि दैव अत्यंत दुस्तर है, दैव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए। पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराओ, उसमें 1000 खंभे एवं स्वर्ण तथा वैदूर्य से जड़ित 100 दरवाजे हों, उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 कोस की हो। राजा की आज्ञा प्राप्त करके सभी कारीगरों ने वैसी सभा बना दी, तरह तरह की वस्तुओं से उसको सजा दिया और धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर को बुलाकर कहा कि विदुर, तुम्हें मेरी आज्ञा है, इंद्रप्रस्थ जाओ, पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र यहां बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जटित सभा जिसमें सुंदर सैया और आसन स्थान स्थान पर सुसज्जित है बनाई है, उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों से द्यूत क्रीड़ा करें। महात्मा विदुर ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती, आप ऐसा कभी न करें, इससे आपके पुत्रों में बैर विरोध और गृह कलह होगा। सबसे भयंकर नाश गृह कलह से होता है, वंश का नाश हो जाए उससे बढ़कर और क्या दुर्दिन देखना चाहते हो? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर यदि होना ही है तो होगा ही, यदि दैव विरोधी नहीं हुआ, भाग्य ने यदि हमारा साथ दिया तो दुर्योधन के बैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब भाग्य के अंदर बंधे हुए हैं। तुम ज्यादा सोच विचार मत करो, तुम तो केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा निकलने के बाद अब तुम्हारे सोचने समझने का समय समाप्त हो गया। आओ परम प्रतापी पांडवों को बुला कर लाओ। विदुर जी की इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।